Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Deranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Shvetashvatara Upanishad, Chautha Adhyay, Daswa Mantra Chalega. Dashve mein क्या विषय है ये हिंदी में लिखा हुआ है, प्रकृति और परमेश्वर का स्वरूप तथा उनकी सर्वव्यापकता। प्रकृति क्या है और प्रकृति क्या है अर्थात उनका स्वरूप कैसा है और उन दोनों की भी सर्वत्र व्यापकता क्या है। पूर्वोक्तायाः प्रकृतेर मायित्वं तद अधिष्ठात्री सचिदानंद रूप ब्रह्मणः तद उपाधि वशात् मायित्वं च। भाष्यकार संबंध बता रहे हैं, पूर्वोक्तायाः प्रकृतेः, पूर्व में मानी नवे में जो माया को बताया, जो प्रकृति है, प्रकृति का अर्थ यह है कि कारण। तो प्रकृते हे मायित्वम अर्थात प्रकृति जो माया है, ये माया तद अधिष्ठात्री उसका अधिष्ठान माया रूपी कारण जो प्रकृति है और तद अधिष्ठान माने उसका जो अधिष्ठान है कौन है तो सचिदानंद रूप ब्रह्म ही है। सचिदानंद रूप ब्रह्मणः फिर ये सच्चित आनंद रूपी जो ब्रह्म है इसके बारे में बताते हैं, तद उपाधि वशात मायित्वम मैंने दो अलग अलग बताया, जो प्रकृति माया है और उसका अधिष्ठान सचिदानंद पर ब्रह्म है। उस परब्रह्म में जो मायित्व आया हुआ है, मायित्व किसके कारण आया, उपाधि वशात मायित्वम। पूर्व में भी श्लोक में आया कि वह कैसा है, माई अर्थात माया के कारण माई है। नवे मंत्र में आसमान माई सृजते विश्वम एतत् तस्मिंच अन्यो मायया सन्निरुद्ध, पूर्व मंत्र में आया ना माई, उसी के लिए बोलते हैं माई तुम क्यों आया, तो जो माया उपाधि है उसको लेकर उसमें मायित्व आया हुआ है ये बताते हैं। स्वयं तो कैसे हैं, तो चित्रूप है, आनंद रूप है, सच्चिदानंद रूप है। चिद्रूपस्य मायावशात कल्पिता अवयव भूतैः कार्य कारण संगातैः सर्वं भू आदि इदं परिदृश्यमानं जगत व्याप्तं च इत्याह। चिद्रूपस्य मनि स्वयं चैतन्य रूप ऐसा परब्रह्म है, वह परब्रह्म मायावशात मानी माया के कारण कल्पित, ये पूरे के पूरे अवयव है इन, और ये अवयव ही कल्पित कार्य कारण संगात बनते हैं। कल्पित मानी वास्तविक नहीं, वास्तविक और एक कल्पित पदार्थ होते हैं। तो जितना भी संसार दिखाई दे रहा है तो ये किसी ना किसी अवयवों से बनता है, अवयवी और अवयव, अवयव और अवयवी, हाथ पैर ये सभी के सभी अवयव है, गात्र है, शरीर को अवयवी कहते हैं, अवयव और अवयवी। तो ये पूरा का पूरा वही परब्रह्म है, तो किसके कारण है तो उसके बारे में बताते हैं, माया वशात कल्पित अवयव भूतैः, माया के माध्यम से जो कल्पित किए गए हैं मानी कल्पना किए गए जो अवयव है, ये अवयव के माध्यम से ही कार्य कारण का संगात होता है। कार्य और कारण संगात, कार्य का कारण, कहीं कार्य करण संगात, कहीं करण को ही बोलते हैं असाधारण कारणम करणम, करण और कारण कोई नहीं। कारण तीन प्रकार के होते हैं, कहीं दो प्रकार के, वेदांत में दो प्रकार के कारण होते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। दूसरे नैयायिक आदि बोलते हैं, तीन कारण होते हैं। उपादान कारण को उलुक समवायी कारण बोलते हैं, और जो उपादान कारण अवयव होते हैं उनका जो संयोग होता है उसको असमवायी कारण बोलते हैं, और बनाने के लिए जो सामग्री लगती हैं अलग से उनको निमित्त कारण बोलते हैं। जैसे आटा रोटी के लिए उपादान कारण है, आटे के बिना रोटी बन नहीं सकती है, तो ये आटा उपादान कारण हुआ। और आटे में पानी जब डालते हैं तब वो आटा गूंधता है, अवयव का संयोग हो गया। तो आटा आटे का संयोग, मैंने आटे का संयोग हुआ ना, अवयवों का संयोग, केवल आटे से तो रोटी नहीं बनी, तो आटे को आप लोगों को क्या करना पड़ा, पानी डाल के गूंधना पड़ा, मैंने आटे के जितने भी आटे रूपी अवयव थे उनको संयोग करना पड़ा। ये संयोग को, अवयव के संयोग को असमवाय कारण बोलते हैं। आटा हो गया समवायी कारण और आटे का अवयव हो गया असमवायी कारण, और उसके बाद में जो बेलन है, चकला है, जो भी आप लोग है, ये सब के सब कौन से कारण होते, निमित्त कारण होते। और वेदांत में केवल दो ही कारण मानते हैं, निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। उपादान कारण किसको बोलते हैं, अवयवों को ही उपादान कारण बोलते हैं, अवयवों को उपादान कारण बोलते हैं। जैसे वस्त्र कार्य हो गया और तंतु क्या हो गए, उपादान कारण हो गया, और बनाने वाला निमित्त कारण हो गया, दो ही शिक्षक चलते हैं। अब तंतु का संयोग आदि बोलने की कोई जरूरत नहीं है वेदांत में। तो यहां ये बता रहे हैं, अवयव भूत ही कार्य करण संगात है, कार्य करण संगात, तो करण के ऊपर मैं बोला था करण किसको बोलते हैं, तो असाधारण कारण को करण बोलते हैं। तो कोई साधारण कारण होते हैं, कोई असाधारण कारण होते हैं। कार्य मात्र के प्रति ईश्वर है, ईश्वर की इच्छा है, प्रागभाव का प्रागभाव है, प्रतिबंधक अभाव है, सब मिलकर नौ साधारण कारण गिनाए गए अपना न्याय में, और असाधारण कारण तीन, समवायी असमवायी निमित्त, ये कार्य के प्रति असाधारण कारण होते हैं, और बाकी सभी के सब साधारण कारण होते हैं। तो यहां मैं इसलिए बोले कार्य करण संगत के ऊपर बोल रहा था, कार्य यहां शरीर हो गया, करण हो गया सभी अवयव और उनका संगत, ये शरीर को ही बोला जाता है कार्यकरण संगत। अब पूरा का पूरा जो अवयवी है, एक पदार्थ बना हुआ है, उस पदार्थ का नाम है ये क्या है, तो कार्यकरण का संगत है, कार्यकरण का संगत। तो ये बोलते हैं माया से कल्पित जो अवयव है, इन अवयवों के माध्यम से कार्यकरण जो संगत बना हुआ है, इस कार्यकरण संगत से सर्वम भूहु आदि इदम परिदृश्यमान, भूहु आदि का अर्थ है भूर्लोक महर्लोक, नीचे के सात लोक और ऊपर के भी सात लोक, जितने भी लोक है ये सभी के सब लोक उसी के माध्यम से परिदृश्यमान दिखाई देते हुए जगत व्याप्तम, पूरा का पूरा जगत उन्हीं से व्याप्त है। किससे व्याप्त है, मानी सच्चिदानंद परब्रह्म की जो माया है, उस माया के द्वारा कल्पित कार्यकरण जो संगात है, कार्यकरण संगात एक प्रकार से पूरा का पूरा शरीर, किसी का भी शरीर, 84 लाख योनियां हैं, इन सभी योनियों को कह सकते हैं ये कार्यकरण संगात है। कार्य मने शरीर, करण मने अवयव, कुछ भी वस्तु हो तो अवयव के बिना तो बनती नहीं है। तो वस्तु दिखाई देते हैं, विशिष्ट वस्तु ही दिखाई देती है, पुस्तक दिखाई दिया तो पुस्तक कैसा, पन्ने रूपी अवयवों से युक्त है, पन्ने रूपी अवयवों से युक्त है। तो इसी को, एक वस्तु को कार्यकरण संगात शब्द से कहा। तो 84 लाख योनियां हैं, ये सभी के सब कैसे हैं, कार्यकरण संगात के रूप में ही है, और वही परब्रह्म इन रूपों में व्याप्त है, कार्य करण संगात के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। कैसा है उसी आशय से श्रुति कह रही है, मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरम् तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्। मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरम् तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्। मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरं तस्य अवयवभूतैः तु व्याप्तं सर्वं इदं जगत्। मायां तु प्रकृतिं विद्यात् न त का न हुआ है तो त का न हुआ है तो यह विद्यात जानना चाहिए विधिलिंग की क्रिया है। गच्छेत जाना चाहिए आदि विधिलिंग है, करना चाहिए बोलना चाहिए जिसको आप लोग अंग्रेजी में मूड बोलते हैं, तो वहां उस क्रिया को जाना चाहिए खाना चाहिए पीना चाहिए इस प्रकार के। तो विद्यात मने जानना चाहिए, मैंने क्या जाना, माया तो प्रकृति, जो प्रकृति प्रकृति क्या है वो माया ही है, मुझे जगत का कारण है। तो प्रकृति मने कारण, इस कारण का नाम क्या है माया, तो माया को प्रकृति कहिए या प्रकृति को माया कहिए, जो प्रकृति है उसी को माया बोलते हैं, जो स्वरूप है अरे ये सब उसका स्वरूप है उसकी ये माया है। तो यहां प्रकृति को माया जानना चाहिए, इसलिए हिंदी में लिया प्रकृति को माया जानना चाहिए, माया को प्रकृति नहीं, क्या बोलते हैं प्रकृति को माया, तो माया पता ही नहीं ये है तो उसको हम प्रकृति क्यों, अरे प्रकृति दिखाई दे रही है पूरा का पूरा, स्वभाव जेन कौनते या निबद्ध स्वेन कर्मण, ये वस्तुओं का जो स्वभाव को भी प्रकृति बोलते हैं, और जो दिखाई दे रहे कारण ये सभी के सब, इस प्रकृति को माया कहना चाहिए, जानना चाहिए समझना चाहिए, जो प्रकृति दिखाई दे रही है इसको माया समझना चाहिए, इसका मतलब माया समझना चाहिए, जो दिखाई दे रहा है उसको माया समझना चाहिए, मने नहीं है यही है, माया का अर्थ ही क्या है, नहीं है और दिखाई दे रहा है, जो प्रकृति नहीं होती हुई दिखाई देना यही प्रकृति का मायात्व है माया जन्म। और तू माईनम महेश्वरम, तो का अर्थ और जो माईनम मनी मायावी है उसको महेश्वर अर्थात माया जिसकी है उसको महेश, जिस धन जिसका है या जिसके पास है उसको क्या बोलते हैं महेश, अपना धनी बोलते हैं, धनवान धन जिसके पास है उसको धनवान अथवा धनी बोलते हैं। इसी प्रकार ये जो प्रकृति को माया बोलते हैं समझना चाहिए, नहीं है वो दिखाई देता है, ऐसा जिसका स्वरूप माया है ऐसी शक्ति जिसकी है उसको महेश्वर कहते हैं। माईनम माने इस माया वाले को इस स्वभाव वाले को क्या समझना चाहिए महेश्वर, जो नहीं होता हुआ भी जो दिखाई देने वाली माया, ये माया जिसके पास है उसको महेश्वर कहना चाहिए। तस्य अवयवभूतैस्तु इदं सर्वं जगत् व्याप्तम्, तस्य अवयवभूतैस्तु उसके अवयवभूत माने जो माया है और ये परमात्मा की है, और इस परमात्मा की माया के माध्यम से ये पूरा का पूरा संसार उनके अवयवभूतों से कल्पित है, कल्पित है अर्थात कल्पना की गई है, वास्तविक नहीं। व्यवहार दशा में जैसे तंतु के अवय तंतु रूपी अवयव से वस्त्र ये निर्मित है, कल्पित नहीं, मैंने कल्पना से नहीं। मैं व्यवहारिक सत्ता अलग, पारमार्थिक सत्ता अलग और प्रातिभाषिक सत्ता अलग, तीन सत्ताएं अलग अलग होती हैं। अपने को मुमुक्षुओं को साधकों को श्रुति माता हमेशा प्रातिभाषिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता इन दोनों में समानता ही बताती। शास्त्र हम लोग पढ़ते हैं तो हमें व्यवहारिक सत्ता से कोई प्रयोजन है ये नहीं बताते। जैसे स्वप्न की सत्ता है प्रातिभाषिक सत्ता, उसमें और ये 100 साल जीने वाली हमारी जिंदगी में जागृत अवस्था की जो पदार्थ है व्यवहारिक सत्ता, इन दोनों सत्ताओं में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों भी कैसी है, केवल प्रतीति मात्री दिखाई, वो 1 मिनट की दिखाई देती हो और ये 100 साल की दिखाई हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। केवल हमारे किए हुए कर्मों को भोगने के लिए ये व्यवहारिक सत्ता का प्रयोजन है। मैं इसलिए बोला कि ये शास्त्र हमें व्यवहारिक सत्ता और पारमा अपना स्वप्न प्रातिभाषिक सत्ता दोनों को एक ही समझाते रहते, अलग अलग यहां समझाता नहीं। हमेशा शास्त्र यही बताएगा कि व्यवहार तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसका मतलब है ही नहीं, कल्पित है, माया का खेल है, ऐसा क्यों बोलना है। तो एकमात्र पारमार्थिक सत्ता को ही दृष्टि में रखकर कर हमारी दृष्टि साधक की दृष्टि कहीं कहां होनी चाहिए, पारमार्थिक दृष्टि होनी चाहिए, वास्तविक दृष्टि होनी, कार्य के ऊपर दृष्टि न जाए कारण के ऊपर दृष्टि जाए। व्यवहार में हमारी दृष्टि कार्य के ऊपर जाती है, व्यवहार में दृष्टि कहां जाती है, कार्य के ऊपर, कार्य के कारण के ऊपर कभी नहीं जाते, हमें ऐसा कार्य दिखाई देता है, नाम रूप आदि कहिए। लेकिन पारमार्थिक सत्ता में ये कार्य है ही नहीं है, एकमात्र कहां दृष्टि है, कारण के ऊपर ही दृष्टि है। मैंने साधकों को अपने जीवन का जो मूल उद्देश्य है, मूल उद्देश्य क्या है, इस शरीर का मूल उद्देश्य तो एकमात्र क्या है, अपने स्वरूप को जानना। आयुष्याचे साधने सचिदानंद पदवी घृणे, संत तुकाराम महाराज जी बोलते हैं आयुष्याचे साधने, जीवन भर हम साधना किए तो उन साधनों का प्रयोजन क्या है। तो क्योंकि हम लोग कार्य करते हैं तो कार्य किसी ना किसी फल के लिए करते हैं, कुछ भी कार्य हमारा व्यर्थ जाता नहीं है। तो जीवन भर साधना करें तो इन साधनों का प्रयोजन क्या होना चाहिए, सच्चिदानंद पदवी घेने, जैसे डिग्री लेते, डिग्री में ही पदवी, जैसे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, कोई वकील साहब बैठे रहते हैं, तो ये सब क्या है, पदवी है। ये पदवी किस साधन से मिली है, अमुक अमुक साल तक कॉलेज में जाने से, मैंने कॉलेज की साधना करने से ये डिग्री प्राप्त हो गई। ये तो थोड़ी साल की डिग्री है, लेकिन यहां पर सच्चिदानंद पदवी को प्राप्त करने के लिए आयुष्याचे साधने, आयु भर ये साधना करे और इन साधनों के माध्यम से कौन सी पदवी लिया जाए, सच्चिदान आयुष्याचे साधने सच्चिदानंद पदवी घेणे, याची डोळा याची देही याची डोळा भोगू मुक्तीचा सोहळा, सोहळा म्हणजे उत्सव, जैसा ये अभी उत्सव तो मना रहे हैं, ये उत्सव मना रहे भक्ति का उत्सव इन लोगों में। इसी प्रकार तुकाराम जी महाराज बोलते हैं इस शरीर में रहते हुए, इस शरीर में एक उत्सव मनाना चाहिए और उस उत्सव को इस आंख से देखना चाहिए। इसी आंख से देखने के लिए उस उत्सव को कहीं बाहर देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। कहां देखना है? इसी शरीर में, इसी आंख के माध्यम से कौन सा उत्सव मनाना है? मुक्ति का। वो कौन सा मुक्ति का? जीवन मुक्ति का। सच्चिदानंद पदवी प्राप्त करना ही ये जीवन मुक्ति का। तो ये मुक्ति का 16 कब प्राप्त होता है? जब इस जीवन मुक्ति को हम प्राप्त करते हैं तो। और ये 16 का आनंद, उत्सव का आनंद जब तक प्रारब्ध रहता है तब तक लेते रहते हैं। तुकामणि मुक्ति परनीली नवरी आता दिवस चारी खेली मेले। तुकारा महाराज बोलते हैं जब मुक्ति का आनंद ले रहा है इसका मतलब मुक्ति मेरी पत्नी हो गई। तुकामणि मुक्ति परनीली, परनीली मनी शादी की गई, परिणय बोलते क्या नहीं, परनीली किसके, मुक्ति। अब मेरी शादी किसके साथ हो गई है? मुक्ति के साथ। आता दिवस चारी खेली मिली, जो प्रारब्ध के दिन चार बचे हुए है, वो चार दिन कितने भी हो लेकिन चार ही तो दिन। अब वो चार दिन खेली मिली मैंने खेलते खेलते बिताऊंगा, अब कोई दुख को क्या है पता ही चलेगा नहीं। मैंने जब तक उस बोध को प्राप्त नहीं होते तभी तक तो दुखी है ना, और उस बोध को प्राप्त होने पर वो सुख दुख कोई पता चलता है? हाँ, वो कुछ पता चलता नहीं है।